नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आकर्षिता सिंह। भारतीय संसद, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करने वाले तीन ऐतिहासिक विधेयकों पर चर्चा कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत की। भारत और ऑस्ट्रिया ने खाद्य सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन तथा रक्षा सहयोग और आतंकरोधी उपायों के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अमरीका के युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ ने ईरान को चेताया, शांति समझौता होने तक बंदरगाह नाकाबंदी और आर्थिक दबाव जारी रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, युद्ध से वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति से उबरने की क्षमता बनी रहेगी। भारतीय संसद, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करने वाले तीन ऐतिहासिक विधेयकों पर चर्चा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की 50% आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और नीति निर्माण में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना समय की मांग है। श्री मोदी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से संबंधित तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी अहंकार पूर्ण भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे भारत की महिलाओं को कुछ दे रहे हैं, बल्कि ये उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि समूची राजनीति व्यवस्था दशकों से इस अधिकार को महिलाओं से छीनने की सामूहिक रूप से दोषी है और इसलिए ये विधेयक प्रायश्चित का एक आवश्यक उपाय है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग न देने की अपील की।
आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल संख्या की बात नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि लगभग 6,700 ब्लॉक पंचायतों में से लगभग 2,700 पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में कमी आने की विपक्ष की आशंकाओं को खारिज कर दिया। श्री शाह ने कहा कि प्रस्तावित ढांचा दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि सुनिश्चित करता है। श्री शाह ने कहा कि वर्तमान में 543 सीटों में सदन में दक्षिणी राज्यों की संख्या 129 है, जो बढ़कर 195 हो जाएगी।
दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। माननीय लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% होगी, तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है।
चर्चा के दौरान कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। उन्होंने कहा कि यह कदम जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।
कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार।
चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है। इससे पहले विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया। गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फोन कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने होर्मुज जल डमरू मध्यमी सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र और उससे बाहर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए घनिष्ठ सहयोग जारी रखने की भी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉ क्रिश्चियन स्टॉकर ने आज नई दिल्ली में बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों ने खाद्य सुरक्षा पर एक समझौता ज्ञापन और सैन्य मामलों में सहयोग तथा आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह पर आशय पत्रों सहित कई समझौतों का आदान प्रदान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया अवसंरचना नवाचार और स्थिरता के क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री स्टॉकर की ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगी।
This visit coming soon.
प्रधानमंत्री की 2024 में ऑस्ट्रिया यात्रा के बाद और हाल ही में संपन्न हुए भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में हुई इस यात्रा ने भारत ऑस्ट्रिया सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय करने में मदद की है। यह यूरोपीय संघ के साथ समग्र रूप से साझेदारी और इसके सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय जुड़ाव के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ऑस्ट्रिया के चांसलर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण आयामों को गति प्रदान करेगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने ईरान को चेतावनी दी है कि जब तक वो शांति समझौते पर सहमत नहीं हो जाता तब तक उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी और आर्थिक दबाव जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं पर हमले हो सकते हैं। आज पेंटागन में संवाददाता सम्मेलन में श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान को अंततः बातचीत की मेज पर आना होगा और एक समझौता करना होगा। उन्होंने कहा कि अमरीका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ईरानी सरकार एक ऐसे समझौते को चुनेगी जो उनके लिए संभव हो और उनके लोगों तथा दुनिया के भले के लिए हो। ईरान ने दोहराया है कि वो परमाणु हथियार नहीं चाहता और उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा है कि चीन ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रमुख क्रिश्चियाना जॉर्जीवा ने कहा है कि वैश्विक वृद्धि में मंदी और युद्ध से उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। IMF की एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए सुश्री जॉर्जीवा ने कहा कि भारत की मजबूत बुनियादी आर्थिक स्थिति इसे अधिकांश देशों से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत की विकास दर वैश्विक औसत विकास दर से 2 गुना से अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में हुई नीतिगत सुधार और संस्थागत क्षमता में वृद्धि ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय संसद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी 3 ऐतिहासिक विधेयकों पर चर्चा कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत की। भारत और ऑस्ट्रिया ने खाद्य सुरक्षा पर समझौता ज्ञापन तथा रक्षा सहयोग और आतंकरोधी उपायों के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ ने ईरान को चेताया, शांति समझौता होने तक ईरान के बंदरगाह की नाकाबंदी और आर्थिक दबाव जारी रहेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।